So, brothers and sisters, Jai Bin. Can everybody hear me?
Yes.
वो कहते हैं कि क्या सभी लोगों को उनकी आवाज आती है?
और वे लोग के आवाज Yeah? You can hear back there? Chaliye. So, good morning to you all.
Good morning.
We had a very nice puja last night.
Kal raat ki puja bahut achhi thi.
I really enjoyed it very much.
Mujhe bhi bahut aanand aaya.
And I thought we'd taken a big step forward from the night before.
और मुझे लगता है कि रात की पहले की पूजा से भी इस पूजा में हम और एक कदम आगे चले गए.
Of course we can go even further.
और निश्चित ही हम इसके भी आगे जा सकते हैं.
I was also thinking a little bit about the rain.
मैं कल थोड़ा सा बारिश के बारे में सोच रहा था.
As I said, it rains a lot in England.
मैंने जैसे कहा है कि इंग्लैंड में काफी सारी बारिश आती रहती है.
And the English always complain about the rain.
और अंग्रेज लोग जो है हमेशा इस बारिश की शिकायत करते हैं.
That's our favorite national sport is complaining about the weather.
तो ये हमारा पसंदीदा राष्ट्रीय खेल है मौसम के बारे में शिकायत करना.
But I was very, very impressed. You all seem to respond so positively and so cooperatively to that rain.
लेकिन मैं काफी प्रभावित हुआ कि कल आप इस बारिश को आपने बहुत ही सुजगता से और शांति से प्रतिसाद दिया.
And there seemed to be a very cheerful and spontaneous response.
ऐसे लगा कि उसके प्रति आपने बहुत ही खुशी से हंसकर और उत्स्फूर्तता से प्रतिसाद दिया.
So that impressed me a lot.
और इससे मैं काफी प्रभावित हुआ.
There's one other thought I've had about the retreat.
इस शिविर के बारे में और भी एक विचार मेरे मन में आया.
We're doing perhaps 4 sessions of meditation each day.
हर दिन हम ध्यान के 4 सत्र लेते हैं.
And this is a really good opportunity to deepen your practice of meditation.
और ये बहुत ही अच्छा मौका है अपनी ध्यान साधना को गहरा करने का.
The more meditation you do, the stronger the experience will be and the more it will last afterwards.
आप जितना ज्यादा ध्यान साधना कर सकेंगे उतना ज्यादा आपका अनुभव मजबूत होगा और उतनी ज्यादा देरी तक उसका असर रहेगा.
So I'd like to urge you all to take full advantage of this opportunity.
और इसलिए मैं आप सभी को विनती करता हूं कि इस मौके का आप पूरा फायदा उठाएं.
It's up to you of course, but I strongly suggest that you go to every session of meditation.
तो ये आप स्वतंत्र है उसके बारे में, लेकिन फिर भी मैं और ज्यादा जोर देकर आपको विनती करना चाहूंगा कि ध्यान के हर सत्र में आप आइए.
I know that not every time can one go. One can't always go every time.
तो मुझे पता है कि हर समय जाना मुश्किल हो सकता है, नहीं जा सकता.
Sometimes you feel ill or something else happens.
कभी कुछ समस्या होती है, कभी हम बीमार होते हैं.
But if you want to get the full advantage of this retreat, I suggest you go to every possible meditation session.
लेकिन मैं आपको सुझाव देना चाहता हूँ कि शिविर का अगर पूरा फायदा आपको उठाना है तो हर ध्यान के सत्र में आप उपस्थित रहने की कोशिश.
Of course, to begin with, you may find it quite difficult.
निश्चित ही शुरू करने में आपको कुछ समस्या लगेगी.
I know there's cushion problem.
मुझे पता है कि ये कुशन की समस्या है.
So it's difficult to get comfortable.
इसलिए आराम से बैठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है.
But nonetheless, if you do go to every session, slowly you will get deeper into meditation.
लेकिन मुझे पता है कि अगर आप हर सत्र में आते हैं ध्यान साधना की तो धीरे धीरे आप गहराई में जा सकते हैं.
Meditation is a gradual process.
ध्यान साधना एक क्रमशः ऐसी प्रक्रिया है.
You slowly go deeper and deeper.
आप धीरे धीरे गहराई में जाते हैं.
So I do urge you all to take full advantage.
इसलिए मैं आप सभी को विनती करता हूँ कि इसका पूरा फायदा उठाएं.
Of course, well, liberty is the theme of the day.
और निश्चित ही आज के इस विषय दिन का विषय है स्वतंत्रता.
So it's your choice whether you go or not.
तो जाना है या नहीं ये आप चुनेंगे.
But I think it will be to your benefit to go to every session if you can.
लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप हर सत्र में जाते हैं तो आपको फायदा ही होगा.
One other thing about the retreat.
शिविर के बारे में और एक बात.
I've been very impressed by the silence there's been.
और जो मौन चल रहा है उसमें काफी प्रभावित हूं.
It hasn't been complete silence, but it's been quite quiet. And do you remember I was saying that if you want to see what's going on in your mind, you need to stop your tongue.
तो आपको शायद पता होगा मैंने कहा था कि अगर आपको अपने मन में क्या चल रहा है इसे अगर स्पष्टता से देखना है तो इस जुबान को आपको रोकना पड़ेगा.
So I suggest as these next two or three days go on that you still your tongue yet more.
और इसलिए मैं सुझाव देना चाहूंगा कि जैसे आगे दिन बढ़ते जाएंगे आप इस जुबान को और ज्यादा शांत रखने की कोशिश करें.
And if you're not going to meditation, especially in the morning, I suggest you keep quiet.
और अगर सवेरे आप ध्यान साधना में नहीं आते हैं खास तो आप शांत रहने की मौन में रहने की कोशिश करें.
This morning down at the bottom there was quite a lot of talking quite loudly around where I'm staying.
तो आज सुबह मैंने देखा कि जहां मैं रहता हूं मेरे कुटिया के आसपास में बहुत सारे लोग जोर से बातें कर रहे हैं.
Well, I was thinking, what's that like for those doing that?
तो मैं सोच रहा था कि जो इतनी सारी बातें कर रहे हैं उनकी अवस्था कैसी
है? Well, you're not getting the advantage of stillness, of silence.
और आपको जो स्थिरता है, शांति है, उसका अनुभव नहीं मिल रहा, फायदा नहीं मिल रहा.
That means you won't get the full benefit from this retreat.
इसका मतलब आपको इस शिविर का पूरा फायदा नहीं मिल रहा.
It's up to you, but I suggest that you try to be as quiet as you can.
तो अब आप ही करने वाले जो करना है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप जितना शांत रह सके रहने की कोशिश.
And overnight, if you can observe silence, that would be very, very good. It would be helpful to others.
और रात भर अगर आप मौन का पालन करते हैं, तो दूसरों को भी इसका फायदा होगा.
So those are my comments on the retreat so far.
तो अभी तक के शिविर के बारे में यही मेरे कुछ विचार हैं.
I'd like to congratulate you all on the depth to which you got on this retreat after just 2 days.
केवल दो दिनों में भी आपने जिस गहराई को तय किया है शिविर में उसके लिए मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं.
So, back to our theme.
तो अभी हम अपने विषय की तरफ आते हैं.
We're looking at the Dhammakranti.
हम धम्मक्रांति की तरफ देख रहे
हैं. And we've been looking at how we bring the Dhammakranti about.
और हम इस बात की तरफ देख रहे हैं कि ये धम्मक्रांति हम कैसे निर्माण कर सकते हैं.
And we've seen that the Dhammakranti starts with us changing ourselves.
और हमने ये देखा है कि धम्मक्रांति की शुरुआत हमसे होती है स्वयं का परिवर्तन करने से.
And we looked yesterday at how we change ourselves through Shila.
और कल हमने ये देखा है कि हम अपना परिवर्तन शीलों के माध्यम से कैसा कर सकते हैं.
So over the next 3 days we're going to be looking at liberty, equality and fraternity.
और आने वाले 3 दिनों में हम समता, स्वातंत्र, समता और बंधुता को देखने वाले हैं.
And these of course are the 3 great principles that underlie the new society.
और ये निश्चित ही 3 ऐसे महान तत्व है, आध्यात्मिक तत्व है जो आध्यात्मिक समाज के अंदर होते हैं.
And these were for Baba Sahib the principles upon which a truly just society was founded.
और बाबा साहब ने यही कहा है कि ये ऐसे महत्वपूर्ण तत्व है जिसकी बुनियाद पर आदर्श समाज खड़ा होता है.
And when he drew up the Indian Constitution, he made those 3 principles, he put those 3 principles right at the start of the Constitution.
जब बाबा साहब ने भारत की घटना लिखी, उस समय इन 3 तत्वों को उसके बुनियाद पर बाबा साहब ने रखा.
Now, these 3 principles first appear in this form in the French Revolution in the late 18th century.
ये जो 3 तत्व है इस रूप में सबसे पहले अगर कहीं आए होंगे तो वो फ्रेंच राज्य क्रांति में आए.
And that revolution was a very bloody and violent overthrow of the king and the lords.
इस फ्रेंच की क्रांति में बहुत रक्तपात हुआ था, बहुत हिंसा हुई थी वहां के राजा को गद्दी से उतारने के.
And it led to 25 years of very destructive war in Europe.
और इसकी वजह से 25 साल तक यूरोप में बहुत ही विध्वंसक युद्ध छिड़े हुए.
But Baba Sahib says he didn't learn these principles of liberty, equality and fraternity from the French Revolution.
लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि ये जो तत्व है स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये मैंने फ्रेंच राज्य क्रांति से लिए हुए नहीं है.
In other words, they weren't violent principles.
दूसरे शब्दों में ये कोई हिंसक तत्व नहीं है.
He learnt them, he said, from my master, the Buddha.
बाबा साहब कहते हैं कि इन तत्वों को मैंने अपने गुरु बुद्ध से सीखे.
And he said that you can only truly practice liberty, equality and fraternity by following the path of the Buddha.
और वे कहते हैं कि बुद्ध के मार्ग पर चल के हम सही में स्वतंत्रता समता और बंधुत्व का अनुभव कर सकते हैं.
So this means that liberty, equality and fraternity are not just political or constitutional principles.
इसका मतलब स्वतंत्रता समता और बंधुता ये केवल राजनीतिक या राज्य घटना के तत्व नहीं है.
You don't just get liberty, equality and fraternity by arranging the constitution.
तो संविधान केवल निर्माण करके हम इन तीन तत्वों का पालन नहीं कर सकते.
Of course that's very important and a very necessary step.
निश्चित ही ये काफी महत्वपूर्ण और आवश्यक ऐसा कदम है.
But the principles run very deep in human life.
लेकिन ये जो तत्व है मनुष्य के जीवन में बहुत गहराई में उतरे हुए हैं.
In the end they're spiritual principles, not constitutional principles.
अंत में ये आध्यात्मिक तत्व है, ये कोई संविधानिक तत्व नहीं है.
And to me this is बाबा साहेब's true greatness.
और इसलिए यही मुझे लगता है कि बाबा साहब की सच्ची महानता का प्रतीक है.
He saw that these political and constitutional principles had spiritual depth.
उन्होंने इस बात को देखा है कि ये जो
He saw that these political and constitutional principles had great spiritual depth.
उन्होंने देखा है कि जो राजनीतिक और संविधानिक तत्व जो है उसकी बहुत ही गहरी ऐसे आध्यात्मिक तत्व है.
So we're looking at very deep principles indeed.
इसलिए हम काफी गहरे तत्वों की तरफ देख रहे हैं.
And we're going to be trying to learn how to practice those principles here and now on this retreat.
और हम ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर इस शिविर में इन तत्वों का अमल हम कैसा कर सकते हैं.
And how we can take them out into the world with us.
और दुनिया में हम इन्हें अपने साथ कैसे लेकर जा सकते हैं.
And today we're looking at liberty.
और आज हम स्वतंत्रता की तरफ देख रहे हैं.
So first of all, what does liberty mean as a political and constitutional principle?
तो सबसे पहले एक राजनीतिक या संवैधानिक तत्व के रूप में स्वतंत्रता क्या है?
Well, it means very simply being free to live the kind of life that you want to live.
तो इसका मतलब है जिस प्रकार का जीवन आप जीना चाहते हैं उसके लिए पूरी तरह से आप स्वतंत्र हैं.
It means not being forced or coerced to live a life you don't want to live.
इसका मतलब जिस ढंग का जीवन हम नहीं जीना चाहते हैं वैसा जीवन जीने के लिए कोई किसी तरह की जबरदस्ती नहीं करना.
Of course there are limits to that because one's own freedom mustn't infringe the freedom of others.
निश्चित ही इसमें कुछ मर्यादाएं हैं क्योंकि अपनी स्वयं की स्वतंत्रता ने दूसरों की स्वतंत्रता पे बाधा नहीं लानी चाहिए.
Otherwise a thief can say, well I'm just exercising freedom by taking your belongings.
अगर ऐसा नहीं हुआ तो चोर कहेगा मैं तो अपनी स्वतंत्रता का पालन कर रहा हूं, आपकी चीजें चुरा रहा हूं, मेरी ये स्वतंत्रता.
So that the state helps to regulate freedom.
तो इसलिए जो सरकार है इस स्वतंत्रता का नियमन करने की कोशिश कर.
The state helps to prevent one citizen taking away the liberty of another.
इसलिए जो सरकार है एक एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के स्वतंत्रता का हनन करने के बीच में आता है और सभी को स्वतंत्रता देने की कोशिश करता है.
And this of course Baba Sahib understood very well and it's enshrined in the Indian constitution.
और इस बात को बाबा साहब ने काफी अच्छी तरह से समझा था और इसी को उन्होंने संविधान में रखा.
But freedom means the freedom to live where you want.
तो स्वतंत्रता मतलब जिस ढंग से आप जीना चाहते हैं उस ढंग से जीने की स्वतंत्रता.
To live where you want, not just be told that you must live there because that's where your community lives.
तो जिस जहां और जैसे रहना चाहते हैं वैसे रहना, इसका मतलब आपको ये जबरदस्ती ना हो कि आप यहीं पर रहो क्योंकि आपका समाज यहां पर रहता है.
To do the work that you want.
और आप जो काम करना चाहते हैं उसमें स्वतंत्रता.
Well, to eat with who you want, what you want.
और आप जो खाना चाहते हैं और जिसके साथ खाना चाहते हैं उसकी स्वतंत्रता.
To have the friends that you want.
और जिन मित्रों के साथ रहना चाहते हैं उसकी स्वतंत्रता.
To have the cultural and educational interests that you want.
और आपके जो सांस्कृतिक और शैक्षणिक रुचियां हैं, दिलचस्पियां हैं, उसमें शामिल होना.
And indeed, to marry who you want.
और निश्चित ही जिसके साथ शादी करना चाहते हैं उसके साथ शादी करना.
So that's what freedom means in the immediate sense.
तो इसी को स्वतंत्रता कहते हैं एक पहले अर्थ.
And it's worth just sort of reflecting, well, do you feel that you've got that sort of freedom?
तो
Maybe you've got them, but do you see them widely practiced around you? These freedoms are enshrined in the Indian Constitution. They're there as rights that the individuals have. But I'm afraid when we look around, we see that many people are not free, even in that sense. There's the remains of the old society which still inhibits people's freedom. India has perhaps one of the best constitutions in the whole world. It's a very liberal, a very free constitution. But there's still a long way to go before every citizen enjoys all those freedoms. So there's still much to be done at the political and social level. Now, I can't say very much about that political and social action. I don't know so much about Indian politics or Indian society. And it's perhaps for all of you to work this out. But there's one very important insight that Baba Sahib had. He said, there's no freedom unless the mind is trained for freedom. So we've got a free constitution, but not free citizens. The citizens still haven't taken on liberty fully. It's a bit like an animal in a cage. You can imagine this animal has been born and brought up in a cage. And every day it just wanders from one side to the other of the cage. So one day, somebody comes along, opens the door of the cage. Freedom comes at midnight. The British went and the door opened. And, well, what does the animal then do? Well, it comes out a little bit. It looks around. And then it goes back inside the cage. It doesn't feel ready to face that freedom. Or it probably, perhaps it even says, come and shut the door. Well, maybe people come and they take the cage away. But it still just walks up and down in the same area. In fact, I heard a story about a tiger just near here. They found a baby tiger, I think, near Chandrapur. And the Tiger Project brought it here to the sanctuary here. And they brought it up until it was an adult. And then they took it out into the jungle around here. Well, it went straight back to the sanctuary. Presumably it didn't have to hunt there. Somebody just fed it every day. So in a way, that's what Baba Sahib's saying. That tiger had to be trained to hunt. So citizens have to be trained to use the freedom that the Constitution gives them.
इसलिए नागरिकों को इस बात का प्रशिक्षण होना चाहिए कि संविधान उसे जो स्वतंत्रता देती है उसका अमल में करें।
So slavery and oppression are in our minds.
तो गुलामी और ये शोषण हमारे मन में है।
And they're in the minds not just of those who are oppressed, but of those who oppress.
ये केवल उनके मन में नहीं होता है कि जिन पर शोषण होता है जो शोषण करते हैं उनके भी मन में ये।
So it's all citizens need to be trained for freedom.
इसलिए सभी नागरिकों को इस स्वतंत्रता का प्रशिक्षण होना चाहिए।
So we could look at this another way.
इसी बात को हम दूसरे ढंग से देख सकते हैं।
That there are two dimensions to liberty.
स्वतंत्रता के दो आयाम हैं।
There's an outer dimension that's political and social.
अब एक बाहरी आयाम है जो सामाजिक और राजनीतिक है।
And that's represented by the free constitution and the freedom of the individual to do what they want.
और ये जो मुक्त संविधान है और व्यक्ति का स्वातंत्र्य है इससे यह व्यक्त होता है।
But there's an inner dimension to freedom as well.
अभी स्वतंत्रता का आंतरिक आयाम भी है।
Inside us.
और जो हमारे अंदर होता है।
It's psychological, even spiritual.
और ये आयाम जो है ये मानसिक है और आध्यात्मिक भी है।
So the constitution gives us that outer freedom. Outer freedom.
ये संविधान है ये बाहरी स्वतंत्रता जो है हमें प्रदान करता है।
There's a lot more work to be done to create social freedom.
सामाजिक स्वतंत्रता निर्माण करने के लिए और बहुत कुछ कार्य करना जरूरी है।
But our task is to work on the inner dimension of freedom now.
लेकिन अभी हमारा जो कार्य है वो हमारे आंतरिक स्वतंत्रता पर कार्य करने का।
We have to train our minds for freedom.
हमें अपने मन को स्वतंत्रता के लिए प्रशिक्षित करना है।
And that's what this retreat is about.
और ये शिविर इसी के लिए है।
So how do we train the mind for freedom?
तो हम इस मन को स्वतंत्रता के लिए कैसे प्रशिक्षित करेंगे?
That's the theme that I'm going to be taking up this morning.
और आज की सुबह का यही हमारा विषय है।
So let's go a little bit more deeply into what we mean by freedom.
तो हम थोड़ा सा और गहराई में जाकर देखते हैं कि ये स्वतंत्रता का मतलब क्या है।
And to do that, let's look at today's Buddha.
ऐसा करने के लिए आज के बुद्ध की तरफ हम पहले देखेंगे।
You remember today's Buddha is the Buddha that's facing me, the Buddha of the Eastern Quarter.
आज के बुद्ध जो है, जो मेरे सामने बुद्ध है, वो पूर्व दिशा के बुद्ध है।
The Buddha of the Rising Sun.
ये सूर्योदय के बुद्ध है।
Each of these Buddhas represents an aspect of the Buddha's mind.
इसमें से हर एक बुद्ध जो है वो बुद्ध के मन का एक एक अंग एक एक पहलू दिखाते हैं।
And this Buddha represents liberty in the Buddha's mind.
और बुद्ध के मन की स्वतंत्रता का जो पहलू है यह बुद्ध व्यक्त करते हैं।
So this Buddha is dark blue in color.
इस बुद्ध का रंग है गहरा नीला।
A beautiful, strong, deep blue.
बहुत सुंदर तेजस्वी और गहरा ऐसा नीला रंग।
Like the blue of the ocean on a clear day.
जैसे जब बहुत ही स्वच्छ दिन होता है तब समुद्र जिस गहरे नीले रंग का होता है उस तरह।
If you've ever been out on the ocean and you look down into its depths, it's a very deep, deep blue.
अगर आप समुद्र की गहराई में गहरे समुद्र में गए और वहाँ आपने अंदर देखा तो आपको बहुत ही गहरा नीला रंग देखने को मिलेगा।
And when you think of that blue, what effect does it have on you?
और जब इस नीले रंग को आप देखते हैं तो उसका आप पर कैसा परिणाम होता है?
What feeling does it give you?
आपके अंदर कौन सी भावनाएं निर्माण होती
हैं? A bit like that, the blue at the top of that poster with Bhante Sangharakshita on.
Bhante Sangharakshita ji का वो जो पोस्टर है उसके ऊपर में जो गहरा नीला रंग है उस तरह का।
Well, to me, it creates a feeling of deep peace and calm.
तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नीला रंग है वो बहुत ही गहरी शांति का और स्थिरता का अनुभावना अनुभव अपने अंदर निर्माण करता।
And this Buddha is touching the ground in front of him.
और ये जो बुद्ध है अपने सामने भूमि को स्पर्श करते हैं।
In that particular figure, the hand isn't quite touching the ground, but that's the way he's going. He's going to touch the ground.
तो इस बुद्ध की प्रतिमा में ये जो हाथ है एकदम जमीन को स्पर्श किया हुआ नहीं दिखता है लेकिन ऐसा शायद अभी स्पर्श करने वाले होंगे अभी तक पहुंचे नहीं
And you remember this refers to the incident after the Buddha's enlightenment
और आपको पता होगा कि बुद्धत्व प्राप्ति के बाद की ये घटना है
You remember that in the legend of what happened the evil figure of Mara came and said what right have you got to sit there
तो आपको कहानी में पता है क्या सुना है हमने कि जब बुद्ध वहां बैठते हैं तो मार आता है और कहते हैं कि आपको यहां बैठने का क्या अधिकार है
And the Buddha said, well, I've been practicing the Dhamma for countless ages and I've built up the strength to sit here on the seat of enlightenment.
और बुद्ध कहते हैं कि कल्पों से मैंने धर्म का आचरण किया है और अपनी शक्ति बढ़ाई है इस जगह पर बैठने की
And he touched the earth. Called the earth to witness all his spiritual practice over the many many years.
और वह भूमि को स्पर्श करते हैं और भूमि को अपनी साक्ष्य देने के लिए वहाँ से बुलाते हैं कि कल्पों से उन्होंने जो आचरण किया है उसके लिए.
So he's very deeply rooted. He's based very firmly on the ground.
इसलिए वह इस भूमि पर बहुत ही गहराई में पहुँचे हुए हैं और मजबूती से बैठे हुए
Now each of the figures is associated with a particular animal.
हर एक जो प्रतिमा है वह खास प्राणी के साथ संबंधित है.
And the animal symbolizes the quality that figure represents.
और ये जो प्राणी है जिस जिस बुद्ध I'm sorry
The animal symbolizes the quality that Buddha represents.
और बुद्ध जिस गुणों को व्यक्त करते हैं उसका प्रतीक यह प्राणी होता है.
So Vairochana's animal is the lion.
तो वैरोचना का जो प्राणी है वह है सिंह.
And this figure's animal is the elephant.
और अक्षोभ्य जो है इनका प्राणी है प्रतीक हाथ.
Well, an elephant is very stable, very solid, very strong. You don't move an elephant easily. An elephant can easily outpush any other animal. So, well, you think of an elephant.
हाथी के बारे में सोचते हैं
You could even imagine you were an elephant.
आप ऐसे कल्पना भी कर सकते हैं कि आप हाथी हो.
And just think what that feels like.
और जब आप सोचते हैं कि मैं हाथी हूं तो कैसा लगता है जरा इसे
No, nobody's going to push you around.
आपको आसपास का कोई भी धकेल नहीं सकता.
And nobody's going to try and force you in any way.
आपको कोई भी किसी तरह से जबरदस्ती नहीं कर सकता.
You're completely free because you're strong.
आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं क्योंकि आप बहुत मजबूत हैं।
And this figure is Akshobhya.
और यह प्रतिमा है अक्षोभ्य।
Well, Akshobhya means the one who cannot be moved, the imperturbable.
अक्षोभ्य मतलब जो अचल है, जिसे हिलाया नहीं जा सकता।
The Akshobhya can't be disturbed. His mind can't be troubled.
अक्षोभ्य को आप विचलित नहीं कर सकते, उसके मन को आप हिला नहीं सकते।
So it's a figure of great strength. Confidence, courage.
तो ये ऐसी प्रतिमा है जो बहुत ही ताकत है, बहुत आत्मविश्वास है और बहुत ही धैर्य है.
And his he holds in his hand, in the palm of his hand, a vajra.
और उनके हाथ में, हाथ के पंजे में वज्र धरा हुआ है.
Now vajra is an ancient Buddhist symbol.
ये प्राचीन भारतीय प्रतीक है.
And it basically seems to have come from a thunderbolt.
और ये जो बिजली का वज्र होता है
So it's like nothing can stop a bolt of lightning.
और ये जो बिजली जब क्या कहते हैं उसको कड़कती है तो उसे कोई रोक नहीं सकता.
A bolt of lightning can break through anything.
और ये जो बिजली का कड़कना है वो किसी भी बांस को तोड़ सकता है.
So again, there's a symbol of great strength and power.
तो फिर से ये बहुत ही शक्ति का प्रतीक है.
So you think of when you think of Akshobhya, you feel very strong, very solid, very confident.
तो तो जब आप अक्षोभय के बारे में सोचते हैं तो आपको बहुत ही मजबूत बहुत ही आत्मविश्वासपूर्ण लगता है
and you can use that figure
और इस प्रतिमा का आप उपयोग कर सकते हैं
if you feel unsteady shaking uncertain well think of akshobhya
अगर आपको विचलित हुए जैसा लगता है अस्थिरता लगती है तो आप अक्षोभय की सोच
and develop those qualities in yourself
और अपने अंदर इन गुणों को लाने की कोशिश करिए
So the image is especially an image when you immediately look at it of great confidence and courage.
तो उनकी प्रतिमा की तरफ आप जब देखते हैं तो तुरंत आपको यह आभास होता है कि बहुत ही आत्मविश्वास और धैर्य आपको वहां दिखाई देगा.
If you're going to be free, you need confidence.
अगर आप स्वतंत्र होने वाले हैं तो आपके पास आत्मविश्वास चाहिए.
You need courage.
आपके पास धैर्य चाहिए.
Well, like that animal that's had the cage taken away, it hasn't got the courage to go out into the jungle.
तो उस प्राणी की जैसा जिसका पिंजरा निकाल गया है अब उसके पास धैर्य चाहिए जंगल में जाने के लिए.
We need that kind of confidence if we're going to be free.
अगर हम स्वतंत्र होना है हमें तो उस तरह का आत्मविश्वास हमारे अंदर चाहिए.
And of course, Baba Sahib himself embodied that kind of confidence to a very high degree.
और विशेष रूप से बाबा साहब के अंदर इसी तरह का आत्मविश्वास बहुत ही ऊंची मात्रा में हम देखते हैं.
Then, in many ways, he was like an elephant.
कई अर्थों से बाबा साहब जैसे हाथी थे.
Nothing could move him.
कोई भी उन्हें हिला नहीं सकता.
Nothing could stop him.
कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता.
And so we need that kind of confidence, that kind of courage, that kind of strength.
तो हमें इस तरह का आत्मविश्वास चाहिए इस तरह का धैर्य चाहिए.
So the Buddha has that confidence to the supreme degree.
तो बुद्ध में इस तरह का जो आत्मविश्वास है एक परमोच्च स्तर में है.
The Buddha said on one occasion that there was no he realized that if he went into any kind of assembly, nobody could challenge him.
बुद्ध एक समय ऐसा कहते हैं कि किसी भी प्रकार की परिषद में वह जाए कोई भी उन्हें आह्वान नहीं कर सकता.
If he stood up anywhere, nobody could say anything that would undermine him.
अगर वह कहीं पर भी खड़े हो जाते हैं कोई भी ऐसे शब्द नहीं कह सकता जो उन्हें नीचे ला सके.
Now that's quite difficult.
ये बड़ी मुश्किल बात
है. Well, here I am standing up in front of you.
अगर मैं यहाँ पर हूँ आपके सामने खड़ा हूँ.
Well, I don't know. One of you might ask me a question and I might not know the answer.
अब मुझे पता नहीं आपसे कोई मुझे सवाल पूछ लेगा और मुझे उसका जवाब देना नहीं आएगा.
One of you might say something about me and I might not know how to reply.
अब कोई मेरे बारे में कुछ कहेगा और मुझे पता नहीं चलेगा कि अब मैं क्या जवाब दूँ.
And any of you who've done any public speaking will know how much confidence and courage you need to stand up.
और आप में से किसी ने अगर एक लोगों के सामने बोलना अगर आपको आता है तो आपको पता होगा कि कितनी धाड़स की जरूरत होती है.
But the Buddha had no fear at all.
लेकिन बुद्ध में इस तरह का कोई भय नहीं था.
I remember when I used to start giving talks, I was so nervous.
मुझे याद है जब मैंने पहली बार ये प्रवचन देना शुरू किया था तो मुझे बहुत ही अंदर भय या अस्वस्थता लगती थी.
I'd start thinking, I think I'm getting ill.
मुझे लगता था कि बस अब मैं बीमार पड़ जाऊंगा.
And I think, oh good, I'm getting ill, so I won't have to give a talk.
और मुझे लगा अरे चलो कोई बात नहीं अभी तो बीमार हो रहा हूँ प्रवचन देने तो जाने की जरूरत नहीं.
Fortunately, these days I've got much more confidence because I've got much more experience. But the Buddha has no nervousness at all. He can get up anywhere and say what he needs to say. He said he had four confidences. He had confidence in his own experience of enlightenment.
बुद्ध कहते हैं कि उनके स्वयं के बुद्धत्व के अनुभव पर उनका विश्वास.
He knew that he was enlightened. He knew that he did see the true nature of things.
वो कहते हैं कि मुझे पता है कि मैं बुद्ध हूँ और मैं सत्य स्वरूप को जानता हूँ.
He knew that nobody could say, "Oh, you don't know this. You don't know that."
उन्हें ये पता था कि कोई भी मुझे नहीं कह सकता कि आपको ये पता नहीं, आपको वो पता नहीं.
Then secondly, he knew that he destroyed all the kleshas, all the defilements in his mind.
दूसरा विश्वास उनका ये था कि उनके अंदर की जो कुछ बुराइयां हैं, जो कुछ क्लेश हैं, उन्होंने सब नष्ट कर दिए.
He knew that his mind was completely pure.
उन्हें ये पूरा पता था कि उनका मन पूरी तरह से शुद्ध है.
Then he knew thirdly that anything that he saw to be a barrier to spiritual development was really a barrier.
अब उनको यह विश्वास था कि किसी भी चीज को उन्होंने आध्यात्मिक जीवन के बीच आने वाली बाधा अगर समझा है तो सही में वो बाधा थी.
Then finally, he knew that what he saw as helping on the path really did help on the path.
और चौथी बात यह थी कि अगर वह सोचते कि यह बात आध्यात्मिक जीवन में मदद करने वाली है तो सही में वह मदद करने वाली.
So the Buddha had full confidence in his own spiritual realization and his ability to communicate.
तो बुद्ध को जो कुछ उन्होंने प्राप्त किया है अपने बुद्धत्व और वो जो दूसरों को जो बताते हैं उसमें पूरा आत्मविश्वास था.
And that made him able to stand up in any assembly and roar his lion's roar.
और इसकी वजह से उन्हें पूरा आत्मविश्वास था कि वो किसी भी परिषद में खड़े हो सकते हैं और अपनी सिंह की गर्जना कर सकते हैं.
That's what the text says.
और ऐसा ही धर्म ग्रंथ कहते हैं.
The lion, when it roars in the jungle at night, all other animals go silent.
जब सिंह रात में जंगल में गर्जना करता है तो बाकी सब प्राणी शांत हो जाते हैं.
So when the Buddha roared his lion's roar, everybody went silent.
इसलिए जब बुद्ध अपनी सिंह की गर्जना करते हैं तो बाकी सब चुप हो जाते हैं.
Or perhaps we should say when the Buddha trumpeted his elephant's trumpet, everything went silent.
तो हम ऐसा कह सकते कि बुद्ध जब अपनी हाथी की सुर से आवाज निकालते थे तो बाकी सब शांत हो जाते.
I don't know whether you've ever heard an elephant's cry.
तो एलिफेंट हाथी कैसा चिल्लाता है आपको पता नहीं होगा तो सुभूति बता सकते हैं.
Kumar Ajib will now demonstrate. I'm not going to do it because it'll deafen you all.
तो कहते हैं कि मैं अभी हाथी से चिल्लाकर नहीं दिखाऊंगा आपको नहीं तो आप भाग जाएंगे.
It's a very, very loud sound indeed.
तो हाथी की जो ध्वनि होती है बहुत ही वो ऊंची होती है बड़े आवाज में वो चिल्लाता है.
So yes, the Buddha had that kind of confidence.
तो बुद्ध में उस तरह का आत्मविश्वास था.
And Akshobhya Buddha exemplifies that confidence of the Buddha.
तो अक्षोभ्य बुद्ध बुद्ध के इस आत्मविश्वास को व्यक्त करते हैं.
That's what he's doing when he touches the earth.
और बुद्ध जब भूमि को स्पर्श करते हैं तो यही बात करते हैं.
He's just saying, you can't move me.
वो कहते हैं कि आप मुझे हिला नहीं सकते.
It's a bit like a karate black belt just standing there saying, come on, try.
जैसे कराटे का ब्लैक बेल्ट और वहां खड़ा रहता है बोलते कि आइए जरा अपना ताकत.
Somebody told me that they once met a seventh dan black belt.
किसने मुझे बताया कि वो सेवन डाउन ब्लैक बेल्ट को मिले थे.
And he was a black belt himself, this friend of mine.
और ये जो मिलने वाला है वो भी खुद ब्लैक बेल्ट था.
So he just thought to himself, I'll try him out.
अब उसने सोचा कि चलो अब इस पर जरा कोशिश करते देखते.
And I'll try and see if I can catch him.
अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको पकड़ सकता हूँ.
And then he just found the thought going out of his mind.
अब उसने देखा कि वो विचार उसके मन से जा रहा है.
And he realized that the black belt had pushed that thought out of his mind even.
तो उसे लगा कि ये ब्लैक बेल्ट वाले ने मेरे अंदर के विचारों को धक्का मार के भगा दिया.
So Akshobhya Buddha is like that.
तो अक्षोभ्य बुद्ध इस प्रकार से.
You don't even think about attacking him.
आप सोच भी नहीं सकते हैं उन पर आक्रमण करने की.
So if we want to be free, we need that confidence.
अगर हम मुक्त होना चाहते हैं स्वतंत्र होना चाहते हैं तो हमें उस तरह का आत्मविश्वास चाहिए.
I know that confidence is a big issue for many people.
मुझे पता है कि आत्मविश्वास बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है.
Recently in Nagpur we had a day for young people.
अभी नागपुर में युवकों के लिए हमने एक दिन का आयोजन किया था.
We had about 3,000 young people come for the day.
करीब 3,000 युवक वहां पर आए हुए थे.
And I think they went from about 14, and the oldest was 76.
अब ये युवकों में से कम से कम उम्र वाला 16 साल का था और ज्यादा से ज्यादा उम्र का 76 साल.
But most people were under 30.
लेकिन इसमें से ज्यादा से ज्यादा लोग 30 के अंदर
थे. And we asked them what issues concerned them.
हमने उन्हें पूछा कि उनके कौन से समस्याएं हैं.
And many, many of them said that confidence was a big issue. And yes, I think that is an issue for many people. So how do you develop confidence? Well, I think the main way you gain confidence is by living a moral life.
तो मुख्य बात है आत्मविश्वास प्राप्त करने की, वह है नीतिमान जीवन जीना.
If you try to live in a way that doesn't do any harm to others or to yourself, confidence will grow within you.
अगर आप इस बात में विश्वास है आपका कि आप स्वयं को और दूसरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तो आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ने लगता है.
You can feel, well, I'm doing my best to live a good life.
आप ये सोच सकते हैं कि अच्छा जीवन जीने के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा
हूं. I'm trying my best to live out my own highest ideals.
और मेरे जो सबसे श्रेष्ठ ऐसे आदर्श है उनके अनुसार जीने की मैं पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूं.
And even if you fail, which of course you will from time to time, you can have confidence that you're making that moral and spiritual effort.
तो आप अगर असफल होते हैं और हर एक व्यक्ति कभी ना कभी असफल होते रहेगा, फिर भी वह आत्मविश्वास आप नीतिमत्ता से बनाए रख सकते.
So if you want to gain confidence, try to live a moral and spiritual life.
अगर आपको आत्मविश्वास चाहिए तो इस तरह का नैतिक और आध्यात्मिक जीवन आपने जीना चाहिए.
If you just steadily work away on yourself, you will gain in confidence.
अगर आप धीरे धीरे अपने आप पर कार्य करते रहते हैं तो इस तरह का आत्मविश्वास आपके अंदर निर्माण होगा.
Well, for instance, if you meditate regularly, gradually you'll build up confidence within your own mind.
उदाहरण के लिए अगर आप नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे आपके मन में यह विश्वास जो है मजबूत होगा.
If you try to understand the Dhamma, you will gain confidence in yourself.
अगर आप धम्म को समझते हैं तो आपको अपने अंदर आत्मविश्वास निर्माण होगा.
If you try to communicate deeply with your friends, you'll gain confidence in yourself.
अगर आप अपने मित्रों से गहराई से संपर्क करने की कोशिश करते हैं तो अपने अंदर आपको आत्मविश्वास बना हुआ दिखेगा.
So I think this is in a way quite simple.
तो एक तरह से ये काफी सरल बात.
Well, at least it's simple to say.
कम से कम कहने के लिए तो बहुत ही सरल बात.
But it's very true.
लेकिन बहुत ही सही बात.
If you just keep working away at your moral and spiritual life, you will gain in confidence.
तो अगर आप धीरे धीरे अपने नैतिक और आध्यात्मिक जीवन में कार्य करते रहते हैं तो इस तरह का आत्मविश्वास आपका बढ़ते रहेगा.
Now, I can speak from personal experience here.
मैं यहाँ अपने स्वयं के अनुभव से बात कर सकता हूँ.
But when I was a young man, I was quite lacking in confidence.
जब मैं युवक था तो मेरा आत्मविश्वास बहुत कम था.
For various reasons, I felt quite timid and shy.
बहुत सारे अलग अलग कारणों से मुझे काफी शर्मिलापन और कमजोरी लगती.
I found it quite difficult meeting people.
और लोगों के साथ बात करना मुझे बड़ा मुश्किल लगता था.
But yes, I tried to live a good life, a spiritual life.
और लेकिन मैंने आध्यात्मिक जीवन जीने की कोशिश की, नैतिक जीवन जीने की कोशिश की.
And I've had some success.
और मुझे कुछ उसमें सफलता मिली.
And I find now that I've got quite a lot of confidence.
और अभी मुझे लगता है कि मेरे अंदर काफी बड़ा आत्मविश्वास निर्माण हुआ है.
I can stand up in front of all of you. I can't imagine doing that when I was a young man.
जब मैं युवक था तो ये कल्पना भी मैं नहीं कर सकता था.
And I don't feel nervous at all with you.
और अभी सामने रह के मुझे कोई डर या अस्वस्थता नहीं है.
I feel I'm with my friends.
मुझे लगता है कि मैं अपने मित्रों के साथ हूँ.
So my experience is that if you just work steadily away at yourself, you will gain in confidence.
और मेरा अनुभव यह है कि अगर आप सातत्य से अपने इस तरह से कार्य करते हैं तो आपको यह आत्मविश्वास मिलेगा.
I'll tell you a little personal precept that I gave myself quite early on.
काफी साल पहले मैंने अपने आप को एक व्यक्तिगत शील मैंने लिया था, मैं उसको आप बताना चाहूंगा.
I made it a sort of rule for myself that if I was frightened of doing something, then I would do it.
तो मैंने अपने लिए खुद एक नियम बनाया था कि अगर कोई काम करने का मुझे डर लगता है तो वो काम मैं जरूर करूंगा.
So for instance, I used to be very frightened of heights.
उदाहरण के लिए ऊंचाई की, मुझे ऊंचाई पर जाने का मुझे बहुत डर लगता.
If I went to the top of something, I'd be very scared and be frightened of falling down.
तो अगर मैं किसी चीज पर चढ़ जाता हूँ तो मुझे बहुत डर लगता था कि मैं गिर जाऊंगा.
I was frightened that I might even jump off.
और मुझे ये भी डर लगता है कि मैं खुद ही कूद जाऊंगा.
So I just made it a rule, whenever there was a height, I would go up it.
तो इसलिए मैंने नियम कर लिया कि जब भी ऐसी कोई ऊंचाई देखता हूँ तो मैं चढ़ूंगा.
I remember I used to frighten my mother because I would just climb up to the top of something.
मुझे पता है कि मेरी माँ बहुत डर जाती थी क्योंकि मुझे ऐसी कोई चीज दिखी तो मैं उसके ऊंचाई पर चढ़ जाता.
So this is quite a good way of overcoming fear and gaining confidence.
तो अपना भय निकालना और आत्मविश्वास निर्माण करने का ये बहुत ही अच्छा तरीका.
If you feel frightened about doing something, do it.
अगर आपको कोई बात करने का डर लगता है तो उसे करिए.
That is, if of course if it's something that's skillful.
हाँ, निश्चित ही अगर ये बात कुशल है.
And in that way you will gradually gain in confidence.
इस तरह से आप आत्मविश्वास धीरे-धीरे बढ़ा सकते हैं.
But if you just work away at your own mind, at your own speech, at your own actions, you will gain in confidence.
लेकिन अगर आप अपने मन पर कार्य करते हैं, अपनी वाणी पर आप सातत्य से कार्य करते हैं, तो ये आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा.
Confidence is a moral quality.
आत्मविश्वास एक नैतिक ऐसा सद्गुण है.
You feel there's nothing you can blame yourself for.
आपको ऐसा लगता है कि अपने आप को दोष देने लायक आपके पास कुछ नहीं है.
You feel you are living out your own ideals.
आप ये सोचते हैं कि आपके स्वयं के आदर्श आप अपने जीवन में अपनाते हैं.
So you feel satisfied with yourself.
इसलिए आप अपने आप से संतुष्ट होते हैं.
So that means you can meet anybody. That means you can meet anybody.
इसका मतलब आप किसी के को भी मिल सकते हैं.
You know where your own confidence lies.
आपको पता होता है कि आपका आत्मविश्वास कहां पर है.
In your own way, you're touching the earth.
तो आप अपनी तरह से इस भूमि को स्पर्श करते हैं.
So, well, that's quite an important issue, I'm sure, for many of you.
मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये बहुत ही महत्व का मसला है.
And if you feel lack of confidence now, you can be quite confident that you can gain in confidence.
तो अगर आपको आत्मविश्वास की कमी लगती है, तो आपको ये बहुत आत्मविश्वास होना चाहिए कि इस कमी से आप ऊपर उठ.
You just need to keep working steadily away, morally and spiritually.
तो आपको केवल इतनी जरूरत है आपके नैतिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में सातत्य से कार्य करते रहना.
So Akshobhya represents confidence.
तो अक्षोभ्य प्रतीक है आत्मविश्वास.
And that confidence is the basis for freedom.
और ये जो आत्मविश्वास है, ये स्वतंत्रता की नींव है.
If without confidence, well, you won't go out of that cage.
इस आत्मविश्वास के बगैर आप इस पिंजरे के बाहर नहीं निकल सकते.
You'll just stay inside the cage, even though the door is open.
भले ही उसका दरवाजा खुला हो, आप उस पिंजरे के अंदर ही रहोगे.
Baba Saheb opened the doors. Now it's for us to go out.
Baba Saheb ne darwaza to khol diya hai, lekin bahar jane ka kaam to hai, ye hamara.
So what I've been talking about so far, you might call psychological freedom.
To jiske bare mein abhi tak main baat kar raha tha, aap use manasik swatantrata keh sakenge.
It's psychological confidence which allows you to go out and be free.
Ye jo manasik aatmavishwas hai jo bahar jane ke liye आपको स्वतंत्रता निर्माण करा सकते.
But the whole issue goes much deeper still.
लेकिन ये समस्या जो है, इससे भी काफी अंदर जा.
So we're going down a gear, down a step.
तो हम एक चरण नीचे आ गए.
We're moving our car into the highest gear.
तो अभी हम अपनी कार को सबसे ऊंचे गियर में जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं.
So I hope you're ready for a new speed and a new height.
मुझे आशा है कि ये नई गति से जाने के लिए और ज्यादा ऊंचाई पर जाने के लिए आप तैयार हैं.
It's like an aeroplane taking off. We're running down the runway and we're taking off.
अभी जैसे हवाई जहाज उड़ने वाला है, हम अभी उस रनवे पर चल रहे हैं, अभी उड़ना है.
So we're going to be talking about spiritual freedom.
तो अभी हम आध्यात्मिक स्वतंत्रता की बात करेंगे.
But to understand spiritual freedom, we need to understand what we mean by lack of spiritual freedom.
तो आध्यात्मिक स्वतंत्रता समझने के लिए आध्यात्मिक स्वतंत्रता क्या नहीं है, ये पहले हमें समझना.
What's it mean for our minds not to be free at the spiritual level?
तो आध्यात्मिक स्तर पर हमारा मन स्वतंत्र नहीं है, इसका मतलब क्या है?
Well, it means that they're enslaved by inner bonds.
इसका मतलब जो अंतस्थ बंध है, उससे हम गुलाम बने हुए हैं.
There are no bonds on our hands or our feet. They're in our minds.
तो ये जो कुछ बंध है, ये हमारे हाथों में या पैरों में नहीं है, ये हमारे मन के अंदर है.
So these bonds are the hindrances.
और ये जो बंध है, ये जिनको निवरण कहते हैं, बाधा कहते हैं.
The five hindrances.
जिन्हें पांच निवरण कहते हैं.
Now you should know those five hindrances.
अब शायद आपको ये पांच निवरण पता होंगे.
So what are they?
अब ये कौन से हैं?
So kamchanda, huh? Vyapada,
huh?
Tinamidha, vichikitsa, or what's that? I can. What was the fourth?
Restlessness and anxiety.
Is that the syndrome, isn't it? So it's kamchanda.
So it's kamchanda.
Hatred.
Dvesh.
Tinamidha.
Avalashya.
Huh? Udacha kukucha. Yeah?
And kukucha matlab aswastata aur chinta.
And vichikitsa, doubt. Yeah. So, okay, so the in our minds is craving for sensuous experience. That keeps our minds enslaved. Our minds can't take off. Then our minds are enslaved by hatred. We're possessed by hatred. You know how if you've got an enemy, it just goes on round and round and round in your mind. Oh, he did this, she did that. I'll say this to them. What somebody ought to do to them. So your mind is enslaved by that hatred. You're not free. And you know how you can't put it down. You say to yourself, well, just stop thinking about it. But round and round it goes. And then, what have we got next? There's tinamidha. That means sleepiness and dullness. Our minds can't fly because they're so dull, so heavy. It's a bit like trying to think after you've had a big meal and your belly is full of bhat. And somebody's trying to talk to you and one eye is closed and you're so... And sometimes we walk around the whole day with only one eye open. So we're enslaved by that state of dullness, of sleepiness, of heaviness. And then, our minds are enslaved by restlessness and anxiety. Our minds are constantly jumping around like a monkey in a tree. We think of this, then we think of that, then we think of that. A bit like a dog walking around in the gardens here. It smells something over there and it rushes over there. And just before it gets there, it smells something over there, so off it goes there. So our minds are restlessly rushing around. Or they're constantly thinking, oh dear, did I make sure everything was all right at home? And, did I lock my suitcase? Where did I leave my shawl? So we're constantly anxious about things. So we're enslaved by that restlessness and anxiety. And then we're enslaved by doubt. We're doing something, but we're thinking, is this the right thing to do? We're sitting there doing the mindfulness of breathing. We think, well, maybe the metta bhavana would be better for me. And when we do the Maitri Bhavana, we think, no, maybe it should have been the Anapanasati. And then whatever we're doing, we think maybe we should be doing something else. So we don't have proper confidence. We're not able to settle down and do anything properly. So these nivarana, they enslave our minds. And they stop the mind from being free.
और हमारे मन को मुक्त होने से वह रोकते हैं.
We're enslaved by these inner habits.
तो हमारी जो अंदर की आदतें हैं, उसके हम गुलाम हो जाते हैं.
And they stop us from being properly free.
और सही तरह से मुक्त होने में वह बाधा डालते हैं.
Our minds are disturbed and troubled.
हमारे मन अस्वस्थ होते हैं, किसी तरह की तकलीफ में होते
हैं. We're addicted.
हमें कोई नशा होती है.
So if we want to be free, we've got to get rid of those hindrances. And this is the first task of meditation. In meditation, what you're trying to do to begin with is get beyond the hindrances. So meditation is training in freedom.
तो ध्यान साधना यह स्वतंत्रता में प्रशिक्षण लेना.
It's training in inner freedom.
यह हमारे आंतरिक स्वतंत्रता का प्रशिक्षण है.
So that you can rise above the hindrances.
ताकि आप इन बाधाओं के बाहर निकल सकें.
Now of course it's quite a struggle sometimes.
अब इसी भी ऐसा करना काफी संघर्षपूर्ण हो सकता है.
But you work away in your meditation and gradually the hindrances weaken.
आप अगर धीरे धीरे अपने ध्यान साधना में कार्य करते रहते हैं तो ये जो निवरण है धीरे धीरे कम हो जाता है.
And from time to time you'll have an experience of freedom from the hindrances.
और समय समय पर आपको इस बाधाओं से मुक्त होने के कुछ अनुभव मिलेंगे.
And that's what we call jhana.
और इसी को हम ध्यान कहते हैं.
Maybe you'll even get some taste of jhana during these few days.
हो सकता है कि इन कुछ दिनों में आपको कुछ ध्यान का अनुभव भी आएगा.
You may not, but you may.
शायद आपको नहीं आएगा, लेकिन आ भी सकता है.
And in dhyana, your mind is, for the time being, completely free.
तो ध्यान साधना में कुछ समय के लिए क्यों ना हो, आपका मन पूरी तरह से मुक्त होता है.
You feel very happy.
आप पूरी तरह से स्वतंत्रता सुख का अनुभव करते हैं.
Your mind is very concentrated on what you want it to be concentrated on.
आप जिस बात पर एकाग्र होना चाहते हैं, उस बात पर आपका मन एकाग्र हो सकता है.
And you have a great sense of peace and stability.
और आपको बहुत ही बड़े पैमाने पर शांति और स्थिरता का अनुभव होगा.
In fact, you feel just like Akshobhya, just like an elephant.
एक तरह से आप जैसे हाथी का जैसा अनुभव होता है, अक्षोभ्य के जैसा अनुभव.
And there's no thoughts in your mind.
आपके मन में फिर कोई विचार नहीं होता.
So you feel completely free, completely at ease.
तो आपको इसकी वजह से पूरी तरह से मुक्त लगता है और पूरी तरह से सहजता लगती है.
And this has an influence on your whole life.
और इसका प्रभाव आपके संपूर्ण जीवन पर आता है.
And your whole life is sort of purified by that experience of inner freedom.
और आपका जीवन पूरा जीवन एक तरह से उस तरह की आध्यात्मिक
spiritual. Your whole life is purified by that experience of inner freedom.
इस आंतरिक स्वतंत्रता की वजह से जैसे आपके संपूर्ण जीवन पर प्रभाव.
And I hope that during these few days you'll get an experience, at least a taste of that kind of freedom.
और मुझे लगता है कि इन कुछ दिनों में कम से कम उस प्रकार के स्वतंत्रता का आपको कुछ अनुभव आएगा.
And you've got a really good opportunity here.
तो आपको यहाँ पर काफी अच्छा मौका है.
Even if it's difficult, just keep trying.
भले ही ये थोड़ा मुश्किल है, फिर भी आप कोशिश करते रहिए.
Under the principle of karma, effort eventually is rewarded.
तो कर्म के सिद्धांत के अनुसार आपकी जो कृति होती है उसका फल आपको जरूर मिलता है.
If you just keep working, you'll have some experience at least of that kind of inner freedom.
आप अगर कार्य करते रहते हैं तो इस तरह की आंतरिक स्वतंत्रता का आपको कुछ अनुभव जरूर आएगा.
So in the first place we gain inner freedom by working on ourselves in meditation.
तो सबसे पहले अपने स्वयं पर कार्य करने से हम आंतरिक स्वतंत्रता का अनुभव लेते हैं.
But in a way we're only being given freedom temporarily.
लेकिन इस तरह से जो स्वतंत्रता हमें मिलती है वो तत्कालिक होती है.
It's a bit like a prisoner being let out of jail on parole. Do you have that here? Parole, is that a... Well, let out temporarily.
तो जैसे कि जेल से किसी को थोड़े दिन के लिए छुट्टी मिल जाती है.
Sometimes in England, prisoners are allowed out for a week or something like that.
कभी कभी इंग्लैंड में कैदियों को एक हफ्ते के लिए वगैरह बाहर छोड़ा जाता है.
But then they have to come back and finish their sentence.
फिर उनको वापस जाना पड़ता है और अपनी सजा पूरी करनी पड़ती है.
So we're allowed out for a while through meditation.
तो जैसे कि ध्यान साधना में हमें थोड़ा सा बाहर घूम कर आने का मौका मिल जाता है.
But when we just come down from the meditation and get on with our ordinary lives, the hindrances slowly come back.
तो जब हम ध्यान से बाहर आते हैं, हमारा दैनिक जीवन जीना शुरू करते हैं,
It's a bit like trying to get rid of weeds from a garden. I don't know whether any of you have done any gardening. But if you want to plant some seeds, well, you have to clear the ground first. So what you do, you just cut down all the weeds. But of course, if they're just cut down, the roots are still there. And they grow again. So meditation is like, the first stage of meditation is like cutting down the tops of the weeds. We clear away the weeds from our minds, the hindrances from our minds. But they come back. What we need to do is to pull them up by the roots. So how do we do that? And this is where we really fly out of the orbit of the earth. Well, to do this, we need wisdom. We need Akshobhya's wisdom. Well, what is Akshobhya's wisdom? It's said to be the mirror-like wisdom. So, what is a mirror like? Well, whatever you put in front of the mirror reflects. The mirror doesn't say, well, I'm going to reflect this, but not that. And the mirror reflects things as they are. It doesn't say, well, I'm going to change this into that. So the mirror is completely objective. It sees things, so to speak, exactly as they are. So Akshobhya, very firm, very steady, very confident. And free of all the hindrances. And he just sees things exactly as they are. There's no distortion. I don't know whether you get this in India, but sometimes in England you have a hall of mirrors in a fairground. And when you go in, some of these mirrors are distorting, so that when you look at yourself, you're suddenly very, very fat. Or you're very, very thin. Or your head is very big and your body is very thin. Because they're distorting mirrors. But Akshobhya's mirror is completely undistorted, completely accurate. Whatever it sees exactly as it is. And of course we saw a little bit of this yesterday. It sees what is impermanent as impermanent. It sees what is without Atman as without Atman. It sees all things as impermanent. It sees that there's nothing that stands behind our experience and doesn't change. Everything even within us is changing. We haven't got some part of us that is permanent and abiding. So Akshobhya's mirror reflects things as impermanent and without self.
तो अक्षोभ्य का जो आईना है वो वस्तुओं को किसी किसी तरह से उसकी प्रतिमा अलग नहीं दिखाता जैसे वैसे.
And it sees that dukkha is an inevitable part of life.
और अक्षोभ्य ये देखते हैं कि दुख जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा है.
Yes, there's happiness, but dukkha will always come.
हाँ, सुख जरूर है लेकिन दुख हमेशा आएगा.
And dukkha is a reflection of our own craving.
और दुख हमारे ही स्वयं की तृष्णा का प्रतिबिंब है.
Because we crave, we suffer.
हम तृष्णा करते हैं इसलिए हम दुख भोगते हैं.
So, Akshobhya sees reality exactly as it is.
इसलिए अक्षोभ्य सत्य को जैसा है वैसा देखता है.
He's not fooled, he's not taken in.
वो उन्हें मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, उन्हें फंसाया नहीं जा सकता.
He sees the three lakshanas in everything.
हर चीज में, हर बात में वो तीन लक्षणों को देखते हैं.
Anicca, anatta and dukkha.
अनित्य, अनात्म और दुख.
He sees them in everything.
वह उन्हें हर बात में देखते हैं.
So, having seen everything in that way, the hindrances are pulled up by the roots.
तो इस तरह से सभी बातों को देखने की वजह से जो बाधाएं हैं उसे आप जड़ से उखाड़ सकते हो.
If you realize that everything is impermanent, well, you can't cling on to anything.
अगर आप इस बात को समझते हैं कि हर बात अनित्य है तो आप किसी पर भी आसक्त नहीं होंगे, चिपके नहीं रहेंगे.
Well, we talked about the rangoli yesterday.
कल हमने रंगोली के बारे में बात की.
And there's an especially beautiful one here today.
और आज इससे भी और सुंदर रंगोली यहाँ पर.
But you can't cling on to it.
आप उससे चिपटके नहीं रह सकते.
I can't say that's such a beautiful rangoli, I want to take it home with me.
अब मैं ये नहीं कह सकता कि इतनी सुंदर रंगोली ये है, मैं इसको घर में ले जाऊं.
I go and try and take it home with me and it's just a pile of dust.
अगर मैंने कोशिश की इसको घर ले जाने की तो ये मेरे हाथ में धूल आ जाएगी.
You can't hold on to that rangoli. And actually everything's like that.
और वास्तव में हर बात इस तरह.
It may seem to be stable, it may seem as if we can have it, but we can't.
ऐसा लगता है कि ये हमें मिल सकती है, हमारे पास रख सकते हैं, या ये पक्की है ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं.
Sooner or later, it'll just be dust in our hands.
अभी या थोड़ी देर से आखिर में वो हाथ की एक धूल बन जाती है.
If we really see that clearly, we'll be free.
अगर इस बात को हम सही में स्पष्ट रूप में देखते हैं तो हम मुक्त हो जाएं.
Because we won't cling.
क्योंकि हम उसे आसक्त नहीं होते.
We'll see things as they really are.
हम वस्तुओं को जैसी है वैसी देखेंगे.
So the hindrances will be pulled up by their very roots.
और इस तरह से जो बाधाएं हैं, निवरण हैं, अपनी जड़ से हम उखाड़ लेते हैं.
So at that point, of course, what we've got is nirvana, nibbana.
तो अब हम यहाँ निर्वाण तक पहुँचे.
And this is what Akshobhya embodies. That complete freedom from all craving that comes from the wisdom of insight.
तो इन तृष्णा से पूरी जो मुक्ति है वह अंतर्दृष्टि की प्रज्ञा से आती है.
And that means freedom.
और इसका मतलब है स्वतंत्रता.
Nirvana means freedom.
निर्वाण मतलब स्वतंत्रता.
That's the true freedom, the inner freedom.
और यह है आंतरिक स्वतंत्रता.
That sort of freedom leaves you free even if outside circumstances confine you.
और इस प्रकार की स्वतंत्रता बाहर में स्वतंत्रता का मौका नहीं होने के बाद भी आपको स्वतंत्र रख सकती है.
And that's the sort of freedom that we need to be working at, need to be trying to develop.
और इस तरह की स्वतंत्रता पर हमने कार्य करना है और इसे विकसित करना है.
And that's what Akshobhya represents.
और इसी बात को अक्षोभ्य व्यक्त करता है.
So we need to be training ourselves to rise above the hindrances.
तो इस तरह से हम इन बाधाओं से ऊपर उठने के लिए कोशिश करते हैं.
We do that by trying to meditate.
By
trying to meditate.
ध्यान साधना करने की कोशिश करके हम ये करेंगे.
And the more we meditate, the more we will rise above the hindrances.
और जितना ज्यादा हम ध्यान साधना करेंगे उतना हम इन बाधाओं के ऊपर उठेंगे.
But the hindrances come back.
लेकिन ये बाधाएं फिर से वापस आएंगी.
That the inner slavery begins again.
हमारी जो आंतरिक गुलामी है फिर से शुरू होगी.
So we need to work more deeply.
इसलिए हमें और गहराई में जाकर कार्य करना पड़ेगा.
We need to pull the hindrances up by the roots.
और हमें जरूरत है इन बाधाओं को जड़ से उखाड़ने की.
And that means we need to reflect upon the true nature of reality.
इसका मतलब जो अस्तित्व का सही स्वभाव है उसके बारे में हमें चिंतन करना पड़ेगा.
We need to reflect that everything is impermanent, without self, and that the dukkha is always present.
हमें यह चिंतन करना पड़ेगा कि हर बात जो है अनित्य है, अनात्म है और दुख है.
Now, those sound in a way sort of negative, if you like. If we think that everything is impermanent, perhaps we feel, well, what's the point of living? But each of those insights has a very positive experience for us, is a very positive experience for us. As we had an insight into impermanence, well, we feel free. As we have an insight into non-selfhood, we feel free. As we have an insight into the nature of dukkha, we feel free. And it's said in Buddhist tradition that we enter through a doorway of freedom. We enter through the three vimoksha mukhas. And they take us to an experience of complete mental freedom. Now, just talk about one of those vimoksha mukhas. And that's what's known as the apranihita samadhi. The apranihita vimoksha mukha. Apranihita means directionless. That means with no particular direction. And this comes as a result of reflecting on dukkha. When you reflect on dukkha, you see that dukkha arises because we crave. Because we hold on to things, well, we suffer when we lose them. Or we suffer because we fear we may lose them. So if we have that insight, that understanding, we let go. And we have a very, very deep experience of contentment. You feel, well, everything I want, I've got inside me. There's nothing I need to do, nowhere I need to go, nothing I want. You feel completely balanced, completely poised, completely happy. And of course, that is real inner freedom. Freedom from the inner compulsion of desire. So we've covered some very, very lofty ground indeed. I hope you're all able to come into the mountains with me and examine this subject. We'll be going back again into those mountains over the next days. But at least now we need to come down. We need to recognize how we take this forward. Yes, we need to develop out of freedom through political and social action. We need to develop inner freedom, first of all, by developing confidence. We develop confidence by just applying ourselves to working on our own minds. And especially by living a good life. And we try to overcome whatever fears we may have. And then we develop inner freedom on a deeper level by meditation. Through meditation, we rise above the hindrances, at least for a while. Then we need to reflect on the Dhamma and especially on the Lakshanas. And as a result of that, we'll pull the hindrances up by the roots, we'll be completely and finally free. And that kind of freedom is represented by the Buddha Akshobhya. He represents freedom on all these levels. So if we want to experience freedom, we need to follow the way of Akshobhya. And that way is the way I've just described. And this is represented by his mantra. It's quite a simple mantra. Starts with Om. Akshobhya Ahum.
Akshobhya Ahum.
So Om Akshobhya Ahum.
Om Akshobhya Ahum.
Thank you for the translation. So, we saw, represents Akshobhya as complete freedom, something we want to attain.
Om yah vyakta karta hai ki Akshobhya bahar hai, purnitah swatantrata ka pratik.
Akshobhya A represents the path of developing freedom.
Aur Akshobhya A matlab is swatantrata ko vikas karne ka marg.
That means on the political and social level.
Iska matlab rajnitik aur samajik star par.
On the psychological level.
Manasik star par.
On the level of meditation.
Dhyan sadhana ke star par.
And on the level of insight.
Aur antardrishti ke star par.
And that leads to hum.
Aur yah hum ki taraf aata.
Our own minds transformed into freedom.
Hamara swayam ka jeevan swatantrata mein parivartit ho jata.
So when we're saying that mantra, we're identifying ourselves with that process, with that path.
Aur jab hum ye mantra kahenge to is marg ko, is prakriya ko hum vyakt karenge.
And we're trying to develop our own minds to be like Akshobhyas.
Aur hum apne swayam ke jeevan ko aisa vikasit karenge jaise hum Akshobha ban sake.
Jai Hind.